क्रांति 24 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगी बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का भी और यूट्यूब लाइव का, इन दोनों में से जहां भी आपको सीधा हो जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि फिर भी आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि कोई सुझाव है हम सब के लिए वो भी दे सकते हैं। ओम। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठी बच्ची अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है अमृत वेला सबसे बेस्ट टाइम। कोई मुझे बताएगा अमृत वेला सबसे बेस्ट टाइम क्यों है? अमृत वेला सबसे बेस्ट टाइम क्यों है और अमृत वेला सबसे बेस्ट टाइम कब हो सकता है? दो बातें, वातावरण शुद्ध है जी, और कोई बताए अमृत वेला बेस्ट टाइम क्यों है?
बाबा इस समय
सबको वरदान देते हैं, पूरे वर्ल्ड को या सिर्फ एक एरिया को? जहाँ आधी रात का टाइम है सोए हुए हैं उनका क्या होगा, जहाँ दोपहर का टाइम है जो योग नहीं कर रहे उनके वहां अमृत वेला ही नहीं है, उनका क्या होगा? अमृत वेले की बात बताओ, बस अमृत वेला, बाकी चलते फिरते सारे जानते हैं। अभी सिर्फ इस समय बाबा ने कहा अमृत वेला, अमृत वेला पर हम चर्चा करें कि अमृत वेला बेस्ट क्यों है, बस इतनी सी बात है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो।
अमृत वेला है प्राप्तियों का समय,
अमृत वेला है प्राप्तियों का समय क्यों है ये? मैं यही तो बेस्ट क्यों है, एक बात तो नहीं आई कि अमृत वेला चारों तरफ शांति होती है और कोई काम नहीं है। दो बातें समझ में आई जिसके कारण हम इजीली परमात्मा से अपना संबंध जोड़ पाते। असली बात जो रात को सोया ही 12 बजे होगा वो अमृत वेला उसके लिए बेस्ट होगा? केवल टाइम अपने आप में बेस्ट नहीं है, अमृत वेला तब बेस्ट होगा जब आप रात को 8-9 बजे तक सो गए हैं तो क्यों 8-9 बजे तक सोना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा शरीर, क्योंकि तमो प्रधान शरीर है, इसको संपूर्ण रेस्ट चाहिए, नहीं तो सवेरे उठकर कनेक्शन जोड़ना तो बात ही अलग है, सिर्फ झुटके खा के और नींद खराब करके परेशान होने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप रात को 12 बजे सो रहे हो, 4 बजे आप उठ करके बैठ रहे हो, आपको नींद आएगी? आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपका कनेक्शन नहीं जोड़ सकता, आपका मंथन नहीं चल सकता। इसके लिए बेस्ट तब है अमृत वेला जब आप रेस्ट कर चुके, शरीर आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। फिर तीसरा कारण, यदि हम सारा दिन बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, परेशान रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर नहीं चले हैं, तभी हम परेशान हुए, तभी हम दुखी हुए हैं, तो भी रात को हम परेशानी में सोए हैं, तो भी अमृत वेला सवेरे ठीक नहीं हो। अमृत वेला तभी ठीक होगा जब आप सारा दिन परमात्म डायरेक्शन पर चलकर कुछ न कुछ प्राप्तियां की हैं। अमृत वेला खाली अमृत टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू तब बनती है जब हम उसके लिए इन सब बातों को ध्यान दें। सवेरे से लेकर शाम तक जितना हम परमात्म डायरेक्शन पर चलकर शांत रहे होंगे, दूसरों को सुख और शांति का अनुभव कराया होगा, उमंग उत्साह में रहे होंगे, उतना रात को सोना भी हमारा टाइम पर ऑटोमेटिक होगा और अमृत वेला उठना भी हमारा ऑटोमेटिक होगा। हमें अलार्म का अधीन नहीं होना पड़ता, ऑटोमेटिक हमारा अलार्म बाद में बजता है, हम पहले उठते थे। ये संस्कार बन जाता है। अमृत वेले का महत्व तब है जब उठने को दिल करे। चल उठ भाई, थोड़ी देर बाबा को याद कर ले। क्या करे, बाबा कहता है 4 बजे उठ के याद करो। ये अमृत वेला उसके लिए बेस्ट हो ही नहीं सकता। अमृत वेला बेस्ट करने के लिए इन सब बातों की भी बहुत बहुत जरूरत। बाकी बाबा तो 24 घंटे हर टाइम सहयोग देने के लिए तैयार है। ये केवल मुरलियों में बाबा ने हम भक्तों को खुश करने के लिए कहा कि 3 से 4 भक्तों का, बाबा के बच्चों का टाइम 4:30 बजे तक, उसके बाद बाबा को भक्त पुकारने लगते हैं, फिर बाबा भक्तों के पास चले जाते हैं। बाबा को कोई कितना भी पुकारे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा को कहीं आना या जाना नहीं पड़ता, बाबा को कोई आने जाने की जरूरत नहीं। हमारा कनेक्शन बाबा कहीं किसी के पास नहीं जाता कि चल गया मैं छोड़ दे उसको प्यार करते हूँ, वो कोई प्यार नहीं करने आता। हम प्यार से याद करते हैं, हम बाबा की श्रीमत का मंथन करके अपने अंदर उन गुणों उन शक्तियों को जागृत करने का पुरुषार्थ करते हैं, तब हमें अमृत वेला कमाई देता है, अमृत वेला फायदा मिलता है। क्योंकि उस समय हमारा मन भी शांत है, वातावरण भी शांत है, काम भी नहीं है और हम सही प्रकार से निर्णय कर पाते हैं, संकल्प कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बात को प्यार से याद, तो कौन से संकल्पों को लॉकअप करना है? इधर उधर के सब संकल्प बाद में, अभी हम बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने दिनचर्या को सेट करेंगे, अपने जीवन को सेट करेंगे। सवेरे सवेरे जो एक समझदार दुकानदार होता है, बिजनेसमैन होता है, या कोई सर्विस करने वाला है, या कोई गृहिणी है, सवेरे सवेरे उठकर अपनी सब चीजों को सेट करते,
और जो बहुत समझदार होते हैं वो रात को ही सेट करके कोई भी चीज अपसेट नहीं पड़ी, ताकि अमृत वेले उठकर मेरे को सीधा बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। रात को ही सेट हो जाए जो समझदार होते हैं। जो कम समझदार है वो सवेरे उठ करके भी पहले फटाफट क्या करते हैं, सेटअप हो गया था और तुरंत बाबा के साथ, क्योंकि लॉकअप करना बंद करना मतलब सेटअप करना कि ये बाद में याद करो, मेरी श्रीमत पर ही केवल आपने अपनी दिनचर्या को बनाना, प्रोग्राम बनाना, बाप से मीठी मीठी रू रिहान कर। अब मीठी मीठी बातें तो उसके साथ होती हैं जिससे प्यार, और प्यार को हम अच्छी तरह जानते हैं जिससे प्राप्ति हुई, प्राप्ति नहीं हुई है हम मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते, सिर्फ नींद करेंगे, झुटके खाएंगे या गीत सुन करके अपने आप को अकड़ कर बैठे रहेंगे, गीत गुनगुनाते रहेंगे, हम मंथन नहीं करेंगे, कमेंट्री सुनते रहेंगे, कमेंट्री के अनुसार विजुलाइजेशन करते रहेंगे, सीन देखते रहेंगे, बिजी रहेंगे, परंतु अपने में कोई परिवर्तन करने वाली बात नहीं आएगी, अपने आप को सुधार नहीं देंगे, हमने अपने में सुधार करने का कोई कार्य नहीं किया। सवेरे बैठकर हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को समाधान देना है बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, तब है अमृत वेला हमारा सफल। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है, देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है, इससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं। क्या हो जाता है कि जब हम आत्मा समझकर कुछ बोलेंगे, और क्या हो जाएगा जब हम देह समझकर बोले। आज बाबा हमें समझाते, जब आप आत्मा समझकर बोल रहे हैं तो आपका एक एक शब्द अर्थ सहित होगा, और जब आप देह समझकर बोल रहे हैं तो आपके शब्द अर्थ की बजाय अनर्थ हो जाए। जैसे हमने बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे शब्द है स्वार्थ, अब इसे हम आत्मा समझ कर बोले तो इसका अर्थ कुछ और है, हम देह समझ कर बोले तो इसका अर्थ कुछ और है। देह समझ कर बोलेंगे तो स्वार्थ का अर्थ होता है इस देह के लिए, देह के संबंधियों के लिए हम कोई काम करते हैं तो कहा जाएगा ये स्वार्थी है, और जब हम आत्मा समझकर बोलेंगे केवल मुझे आत्मा के लिए ही कर्म करना, आत्मा के लिए ही सोचना, आत्मा के लिए ही बोलना, अब देह समझ करके हमने स्वार्थ बोला तो अनर्थ हो गया, आत्मा समझ के हमने स्वार्थ बोला तो वो अर्थ सहित हो गया। जो भी प्रैक्टिकल हम प्रयोग करेंगे, स्वाभिमानी होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, आत्मा समझ कर बोलेंगे तो मुझे आत्म सम्मान में रहना चाहिए, मुझे ये गर्व होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और देह समझ कर बोलेंगे मैं पहलवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ओ मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी पब्लिक है, मैं एक इशारा करूं लाख लोग मेरे सामने उसी टाइम हाजिर हो जाएंगे, ये देह अभिमान, ये स्वाभिमान नहीं है, ये देह अभिमान, अर्थ का अनर्थ हो। ऐसे सारे दिन में इतने शब्द हम बोलेंगे, आत्मा समझ करके नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी वो नेचुरल देह के भाव से बोला जाएगा वो पाप हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि झूठे स्वमान में देह अभिमान में झूठा अभिमान, देह अभिमान को बाबा कहते झूठा अभिमान है, आत्म अभिमान शुद्ध अभिमान, जब हम खुद ही झूठे अभिमान में हैं तो बोली गई हर बात झूठी हो जाएगी। इसलिए आत्म अभिमानी होकर सारा दिन व्यवहार करें तो आप क्या हो जाएंगे, सही अर्थ सहित बोलेंगे, अर्थ सहित सोचेंगे, अर्थ सहित करेंगे, आपकी 500 बातें ठीक हो जाएंगी। देखना भी ठीक, सुनना भी ठीक अर्थ सहित, सोचना भी अर्थ सहित, बोलना भी अर्थ सहित, करना भी अर्थ सहित, नहीं तो 500 खराब हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जी नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग, ये सब गीत आदि क्या हैं, भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती हैं, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है, यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये कायदे मुर्दी नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बात कहते हैं ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ, बाप ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि जिसमें तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे, हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं, साथ रूहानी करते रहो, रू रिहान भी करते रहो, अपने साथ रू रिहान, अपने साथ रू रिहान करना, इस लाइन को बहुत महत्व से समझना है, ध्यान से समझना है। मतलब बाबा ऊपर से परम धाम से नीचे आने वाला नहीं है, बाबा कहीं मेरे बुलाने पर आने वाला नहीं है, बाबा की कोई उंगली नहीं है परंतु उसकी उंगली है श्रीमत, हमने बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़नी है, हम पकड़ तब सकेंगे जब हमने बाबा की श्रीमत को मुरली से सुना हो। बाबा है बाबा से प्यार माना, बाबा कहते बाबा की मुरली से प्यार, बाबा की मुरली सब वो है श्रीमत, बाबा की मुरली बाबा, इसलिए बाबा की मुरली का यदि हमने मंथन ही ठीक किया है तो हम बाबा की श्रीमत की उंगली को पकड़े हुए हैं, और यदि हमने उसका मंथन ही नहीं किया है, सिर्फ सुन डाला, कथा सुनी, भगवान के ऊपर हमने एहसान कर दिया, अब मेरे काम कर देना, देख ले मैं 4 घंटे कथा सुन के जा रही हूँ, सारे काम छोड़ करके मैं तेरे पास आकर बैठ गई, बाबा रूम में मैं 4 घंटे रोज बैठती हूँ, 1 घंटा सवेरे दोपहर को शाम को सोने से पहले 4 घंटे, आप तो मेरे काम कर देना ना, नहीं करे, सुनेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, लाइनों को बहुत अच्छे रू रिहान, स्वयं से रू रिहान करनी है, खुद से जो प्राप्त आपने कर लिया है उसके आधार पर आपने अपने आप को डायरेक्शन देना, ये है अपने साथ रू रिहान करना। ना तो ऊपर से बाबा आएगा ये याद रखना है, ना बाबा के आने की उम्मीद करनी है कि बाबा बताओ मेरी ये समस्या इसका समाधान, समाधान बाबा ने दिया हुआ है, अब आप बैठकर दिए हुए समाधान के साथ अपने आप को समझा के करो, ये है अपने साथ रू रिहान करना, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। दो बातें हैं, रू भी रू रिहान दो में होती है, एक में नहीं होती, बाबा को अपने साथ बिठा लो, उसकी तरफ से भी खुद बोलो, अपनी तरफ से भी खुद बोलो, ये ध्यान रखना, ये एक लाइन के अंदर इतना गुह्य राज बाबा हमें समझा देता है, परंतु हम इसको समझेंगे मंथन करेंगे तब। अब हम इसको एक लाइन को पढ़ के चले जाएं तो इसका कोई भी मतलब कोई भी महत्व नहीं रहता। बात कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूं, ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये चार वृद्धि को पाएगा, एकदम नहीं होता है, अपने आप धीरे धीरे पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। जब मैं छुड़ाता हूँ तभी माया का तूफान आते हैं, जब छुड़ाने नहीं आता हम माया के दोस्त बने हुए साथी बने हुए माया में ही अपना सुख ढूंढ रहे हैं, तो क्यों वो आएगी, क्यों छोड़ क्यों तूफान करेगी। ये तूफान ही तब आते हैं जब बाबा आकर के छुड़ाने के लिए सत्युग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है, यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। ये अभिमान जो बात करेंगे तो अनर्थ, ये अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना ये करना ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है, सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वे सदैव कायम है ही है। हाँ कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही, किस ना किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप में आकर समझाई, ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता, नौकरी करने वालों को बालों पर बंधन नहीं रहता, वे तो अपना काम पूरा किया था। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्री मत पर चलना है, सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके, कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से छठो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मां मेतम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मन, अर्थ सहित याद करने से ही खुशी हो, अर्थ सहित याद करने से ही क्या होगी खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए, जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते, पहले थी अद्वेष भक्ति, पहले क्या थी अद्वेष भक्ति। अद्वेष का मतलब किसको याद है शोर्ट में फटाफट बताएं, एक की भक्ति, हम एक की भक्ति का मतलब एक मैं एक परमात्मा, एक ही मैं और परमात्मा एक दो नहीं है। अद्वेष भक्ति का मतलब है आत्मा और परमात्मा एक है, कोई अंतर नहीं, और एक ही परमात्मा है बस, वो मैं हूं उसी की भक्ति करना, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे, अब वो तुमसे अलग होकर वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं, ये भक्ति कल्प अभी पूरा हुआ, तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्ति थे। अव्यभिचारी भक्ति का मतलब भी एक की भक्ति, इसलिए बहुत सुखी थे, फिर व्यभिचारी भक्त बनने से वेद में आ गए, फिर आपके दो हो गए, फिर चार हो गए, फिर आठ हो गए, आज गिनती नहीं कर सकते। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना, बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देवधारी कोई भी नहीं है, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको ही करते। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिनकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं माँ लक्ष्मी कौन है, माँ लक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था, और तुम बच्चे जानते हो वे जगत अम्बा, तुम सब माताएं। जगत अम्बा कौन है? जगत अम्बा कौन है पत्नी, क्या बताया बाबा? हाँ जी, बाबा ने अभी क्या, बाबा ने अभी क्या बताया? हम सारी, तुम बच्चे जानते हो वो है जगत अम्बा, और तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। मतलब तुम सब माताएं, केवल जगत अम्बा एक नहीं, तुम सभी, एक माता का मंदिर नहीं है, सभी जो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका मंदिर बना हुआ है, सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब फिर से शक्ति लेते हो योग बल से, शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुली लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई ने अंगुली लगाई और तुम फंस पड़ो, ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडव की युद्ध है नहीं, ये युद्ध है इसकी माया की, हमारे अंदर युद्ध है। जो हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, पवित्रता का अभाव है, उसका युद्ध है हमारे, और किसी का नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है, मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते, मार डालते हैं, एक दो गज एक इंच के ऊपर युद्ध हो गया तो हो गया, नाक की ठन गई तो ठन गई, जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है, राम राज्य रावण राज्य आदि, तुम बच्चों को यही ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुख का, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो, वे भी बिंदी, वे भी क्या है, बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है, यहाँ पाठ बजाने आए, अब पाठ पूरा हुआ, अब बाप कैसे हैं, अब बाप कैसे हैं, मुझे याद करो तो विकार में विनाश होंगे। विकार आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है, साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप, आत्मा तो परम आत्मा, अनेक मते हैं। अभी तुमको एक श्री मत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है, वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, वे भी दृष्टि के बीच में आकर बैठते बाजू में, ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें, ये सब क्या है नई बातें, जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, विनाश होने पर ही आधार है। तुम्हारे भविष्य का तुम बच्चों के साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। जहां बाप आते हैं, भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए, फिर तो मनुष्यों की गिनती ना की जाती। 5000 साल के अंदर 9 अरब हो गए हैं लगभग, और लाखों वर्ष हो तो क्या हालत हो जाएगी। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे, और खंड नहीं थे, वे होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वे प्राय लोप हो गया। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वे धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया। कोई को भी कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझ आ सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प आता, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो, ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर को आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या वे क्या काम, वो आत्मा क्या काम की, उसे ये नहीं पता हो कि मेरा डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है और मेरे साथी एक्टर कौन है, वो क्या काम किया। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब सिर्फ वापस जाना है, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे गोदरी में करतार देख। गोदरी क्या बला होती है भाई? ये गोदरी कहां से आ गया? हाँ क्या हाँ जी किसको पता है गोदरी? गुड़ जाने गुड़ की, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये पता है किसी को? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने मतलब बहुत एक ठेला होता है जिसमें गुड़ रखा जाता है, यानी गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने मतलब एक गरीब आदमी जो होता है गरीब उसका जो सबसे साधन होता है जिसमें वो कोई चीज रखता है उसको गोथरी बोलते हैं, उसको गोदरी बोलते हैं। मतलब हाँ कपड़े की बनी होती है, पहले उसमें गुड़ रखते थे तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो इसी प्रकार से गोदरी में कतार देखा और एक गरीब से गरीब छोटी से छोटी चीज के अंदर हमने भगवान को देखा। मतलब कहीं भी परमात्मा को कहां देखा? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। हमने परमात्मा को समझा और कहां समझा? उसके जैसे दिखाते हैं रविदास के वो बैठा होता है जिसमें वो पानी लेके बैठा होता है सूते के जो डाकने वाला, उसमें से गंगा निकल गई कठौती में गंगा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहां से भी ये सारी बातें जो बनाई है कि मतलब गोदरी मैं करतार देखा माना ऐसे बहुत छोटी से छोटी जहां कोई सोच नहीं सकता वहां भी परमात्मा के दर्शन हुए। अब देखा कहां? देखा कहीं या जाना कहीं? अब देखने वाली बात को बाबा कैसे संभाल रहे हैं कि दुनिया वाले कह देते हैं देखा, अब क्या कहोगे? देखा कहोगे कि जाना कहोगे? बात एक ही, हमने बुद्धि से जाना, देखना माना बुद्धि से जाना, इन आंखों से नहीं देखा परंतु हमने बुद्धि से परमात्मा को जान लिया समझ लिया। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं, कोई चीज कोई को समझ में आ ना सके। नवदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं, आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये फिर पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे याद के बल से पाप मिट जाएंगे, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है, मनुष्यों को पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कैसे भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी शरण में रुक रहे, अर्थ नहीं जानते। राज की मुरली का विषय क्या है? अर्थ नहीं जानते तुम माता पिता। अब यदि वो देव समझ करके बोल रहे हैं तो कैसे वो हमारा पिता है, कैसे वो हमारी माता है, कैसे वो हमारा बंधु है, कैसे वो सखा है? अब आत्मा समझकर बोले तो इसका अर्थ समझ में आ सकता है, और ये समझ में भी उसको आ सकता है जिसने परमात्मा के साथ अभी सारे संबंधों को निभाना सीख लिया है। जिसने नहीं सीखा है तो वो अभी आत्मा समझा ही नहीं अपने आप। जो अभी परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का रस नहीं ले रहा फिर वो कब लेगा? कौन बता सकता है सर्व संबंधों के रस लेने की सहज विधि? सहज विधि कौन बता सकता है? परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव हम कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, बाबा का कहना माने। कौन सा कहना माने? जो भी बाबा बोले वो कहे, कुएं में गिर जाओ तो गिर जाए। हाँ जी, हाँ बोल दे तो हम गिर जाए, मतलब ये निश्चय के साथ बोल रहे हैं। वो यदि कहे कि कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दो, उसी में कल्याण, क्योंकि बाबा जो कह रहा है उसमें कल्याण है। ये बात सोच करके ही हम उनकी श्रीमत पर चल सकते, तब हम सारे संबंधों का आनंद ले सकते। बाबा ने एक बार आपको बताया था, बाबा ने एक बच्चे के लिए कहा, मम्मा ये बच्चा जो है अमृत वेला नहीं उठता है, क्लास नहीं करता है प्रॉपर, इसको ऊपर से गिरा दो, तीसरी मंजिल से गिरा दो। मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने क्या कहा था? जी बाबा, और गिरा दिया। सारे टोक रहे थे कि क्यों क्यों आपने बाबा की ये बात मान ली, किसने कहा है? मैं उसे ना नहीं कर सकती, हाँ मैं उसे ना नहीं कर सकती। अब तुम गिराओगी? हाँ गिराऊंगी। मतलब कहने का है कि उसे गिराने तक उस बच्चे को ये मालूम नहीं था कि मेरे को गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा, और गिरा दिया, चोट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी?
हाँ
जी,
क्या हुआ?
हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक हो, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। मम्मा भी चला थी, नहीं बाबा ने कहा है मुझे बाबा का कहना मानना है, गिरा देना है, गिरा दिया। ये तो नहीं मना किया था कि गद्दे नहीं बिछाता, या ये तो नहीं कहा था, कुछ भी और डायरेक्शन है तो नहीं, यही कहना कि गिरा दो। वो सोचना आपका काम है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन भी हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो, ये ज्ञान का सागर पति पावन उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया हुआ सुख घनेरे देने के लिए, क्या करने आया है? सुख घनेरे देने के लिए आया, रास्ता बताने के लिए। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई, ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं कि ये जाएगा तो कोई दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा, बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कोई बच्चे व्यर्थ चालाकियों में अपना समय वेस्ट करते हैं। अब ब्रह्मा बाबा गया तो दादी प्रकाश मणि बैठ गए थे, दादी प्रकाश मणि गई थे जानकी बैठ गए थे, जानकी दादी गई तो रुक्मणी बैठ गई, इतना ये रतन मोहिनी बैठ गई, ये गद्दियां नहीं चली क्या? बाबा कहते यहां कोई गद्दी नहीं चलती है, ये गद्दियां नहीं थी क्या? ये गद्दियां नहीं, क्योंकि किसी ने भी शिव बाबा की सीट नहीं ली। शिव बाबा नहीं जाता, शिव बाबा मरता नहीं, बाकी तो शरीर क्योंकि शरीरधारी हैं वो शरीर छोड़ेंगे, तो उसकी सीट पर तो कोई बैठेगा, पर तो परमात्मा मरता नहीं, उसकी सीट कोई नहीं ले। अमर हम भी हैं, पर तो हम अपने आप को देह समझने के कारण देह वाली सीट हमको छोड़नी पड़ती है, तो दूसरा आकर उस सीट पर बैठता। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जाती चाल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। आप बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे चालाक आ जाते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तकदीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते और कराते। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान नंबर 1, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेते, ये कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को भी दुख देते हैं तो नोट करना, सच्चाई से बात को सुनाना है। साफ दिल बंद एक बात की याद से सब हिसाब चुप चुप करने हैं। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भाव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तक सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अक्षुत है। जहां प्राप्ति होती है वह स्वतः याद होती है, वहां स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। एक शब्द है प्लेन, दूसरा शब्द है प्लेन। अब दोनों में एक ही मात्रा डबल है एक में और एक में सिंगल है। प्लेन का मतलब होता है साफ बुद्धि, जिसमें कोई किचड़ा ना हो। जिस बुद्धि के अंदर किचड़ा नहीं भरा हुआ वो कोई भी प्लानिंग करेगा, कोई भी योजना बनाएगा, उसको प्रैक्टिकल में लाएगा, सफलता उसे मिलेगी। क्योंकि बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है, विकार भरे हुए हैं, लोभ मोह अहंकार के, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कराएंगे। उस प्लान में उस योजना में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ आप पवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आए। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वो स्वयं तो पावन होंगे। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओके।